तो उस पावर को कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम अनवारों का दरनिगाह नाज़िल फरमा दिए ज़ाते पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज और मंबा बना दिया, हर चीज का मरकज और मंबा बना दिया। अब क्या हुआ, क्या उस पावर से तुम अपने कल्ब को रोशन कर सकते हो? क्या उस नूर से अपने कल्ब को रोशन कर सकते हो? नहीं। इसीलिए ट्रांसफार्मर लगा दिए, एक बगदाद में लगा दिया, एक अजमेर में लगा दिया, एक कलियर में लगा दिया, एक महरौली में लगा दिया, एक देहली में लगा दिया, एक बरेली में लगा दिया, एक देहली में लगा दिया, एक कचौटी शरीफ में लगा दिया। ये जितने बुजुर्गान दीन हैं ये ट्रांसफार्मर का काम कर रहे हैं। मदीने तैयबा से जो अनवारों का जनिया चल रहे हैं उसको अपने अंदर देते हैं, हल्फे इस्तेताद आगे देते हैं। इसलिए पीर की जरूरत, इसलिए पीर की जरूरत, समझ गए? अब बात नहीं भूलो, क्योंकि मिसाल ऐसी दे दी जाए कि बात जहन के अंदर उतर जाए। तो हजरत का तरीका यह था कि ऐसी छोटी छोटी मिसालें देते थे, उन मिसालों ही में आदमी को समझा दिया करते, उसी में इस्लाह हो जाती थी, बात उसके जहन के अंदर बैठ जाती, कल को जहन के अंदर बात बैठ जाती। फलानहु यन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है हम उसे पाकीजा जिंदगी अता करेंगे, और पाकीजा जिंदगी से मुराद इस्लाही जिंदगी। और हजरत की एक आदत यह थी, हमने देखा बुजुर्गों में जलाल, हर किस्म के बुजुर्ग हैं, जलाली और जमाली। हजरत की तबीयत में निहायत जमाल, आप लोग मुशाहिदा कर चुके हैं, उनकी ज्यारत से मुस्तफिज हो चुके हैं, मुशर्रफ हो चुके हैं, गुस्सा कभी नहीं आता था। और बात समझाते थे, कभी कभी तंज व मजा भी फरमाते थे, और मजा फरमाते थे संजीदगी के साथ। अफ्रीका से दो आपके मुरीद आए पाकिस्तान पढ़ने के लिए, और वो सफर में हजरत के साथ हो गए। तो जब लोग पूछते हजरत ये कौन है, फरमाया ये हमारे मुरीद अफ्रीका से पढ़ने के लिए आए हैं, इल्मे दीन हासिल करने के लिए, ये यहां इस्लामिक सेंटर में पढ़ते हैं और रात में यहां आकर तरीकत की तालीम हासिल करते हैं, हम इनको चिल्लाकशी कराते हैं, मुराकबा मुकाशा मुजाहिदा ये सब बताता। फिर हजरत ने एक जुमला फरमाया, कहा ये दोनों तहज्जुद गुजार हैं। अच्छा ये तहज्जुद गुजार हैं, लोगों ने बड़ी हैरत से देखा, देखो जवानी में तहज्जुद गुजार। अब वो दोनों बड़े शर्मिंदा हुए। जब महफिल बर्खास्त हुई तो हजरत से कहने लगे, हजरत आपने कह दिया तहज्जुद गुजार, हमें तो बड़ी शर्म आती है, तहज्जुद तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो फजर भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते, आपने हमारी शान बढ़ा दी, तहज्जुद गुजार। तो हजरत ने क्या जुमला फरमाया, फरमाया तुम समझे नहीं मैंने किस माना में कहा, मैंने तहज्जुद गुजार किस माना में कहा, मैंने इसलिए कहा था कि तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद का वक्त गुजार देते, तहज्जुद पढ़ते नहीं वक्त गुजार देते, इसलिए मैंने तहज्जुद गुजार कहा। कैसा जुमला फरमाया, और उनको तंबीह भी हो गई कि जब ये तहज्जुद गुजार करें तो वाकई हम बन जाए, साथ में इस्लाह भी फरमा दी, मजा भी हो गया, नसीहत भी हो गई, काम भी हो गया। फलानहु यन्नहु हयातन तय्यबा, हम उन्हें पाकीजा जिंदगी अता करते, ये शान है तबाबा। तो ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, हजरत की जिंदगी पूरी इसकी तफसीर वाकयात उठाकर देख ली, हजरत की शान यही। तो हम जो इन बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हैं, क्यों? इसलिए कि हम उस मरकज, जो मरकज और मंबा है मदीने तैयबा में, हम वहां से फैज हासिल करना चाहते हैं, और हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए इनडायरेक्ट ले रहे हैं, इन बुजुर्गों के वसीले से ले रहे हैं। अब लोग कहते हैं ये सरासिल क्या है, ये कादरी, ये नक्शबंदी, ये सोहरवर्दी, ये सब क्या है? मैंने कहा देखो मैं बताऊं, ये सब लाइनें हैं, लाइन लाइनें हैं। कहने कौन सी लाइनें, कि तुम देखते हो ना आजकल मोबाइल चल रहे हैं, एक जैद है, एक टेलीनूर है, एक वारिद है, एक जोम है, ये सारी लाइनें हैं ना, इसी तरह कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी, ये भी लाइनें हैं। ये सारी लाइनें क्या करती हैं, ये एक की बात दूसरे से करा देती हैं, एक की बात दूसरे से करा देती हैं। और कैसे कराती हैं, एक यहां पाकिस्तान में बैठा है, दूसरा अमरीका में, आपने मिलाया, उसने बात करा दी और ऐसी बात करा दी कि यहाँ वाले के मुंह से जो निकल रहा है वहां वाले के कान में पहुंच रहा है। एक घंटे में नहीं, एक सेकंड में, एक लम्हे में इधर मुंह से निकला उधर पहुंच गया। अच्छा कहा यही, मैंने कहा यही तो सिर्फ सलासी का तरीका था। कादरी चिश्ती नक्शबंदी, किसी भी लाइन से वाबस्ता हो जाओ मदीने तैयबा बात हो जाएगी, लेकिन बात ऐसे नहीं होगी खाली तुम जैद का मोबाइल लेकर बैठ जाओ बात होगी। नहीं, नंबर मिलाना पड़ेगा, नंबर मिलाओ, पहले नंबर मिलाओगे तब लाइन मिलेगी। और एक और बात है, मोबाइल भी ले लिया नंबर भी मिला दिया बात नहीं होगी, क्यों? बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी खत्म। मोबाइल आपके पास है, नंबर भी है जहां बात करनी है, आप देख रहे हैं उसमें उसमें कोई नंबर ही नहीं, साफ है बिल्कुल। क्या हुआ यार, मैं लगाना भूल गया, चार्ज करना ही भूल गया। चार्ज करो, बैटरी चार्ज करो तब नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा तब बात होगी। अब बैटरी कैसे चार्ज होगी? किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, वो एक निगाहें कर्म करेगा, कल साफ होगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, मदीने तैयबा बात हो जाएगी। अच्छा मोबाइल में एक और चीज है, एसएमएस। एसएमएस है ना, करते रहते एक दूसरे को उल्टे सीधे एसएमएस, और आजकल तो पूरी बुकें मिल गई एसएमएस की, पढ़ पढ़ के आदमी पागल हो जाए, ऐसे ऐसे एसएमएस लिखे अलमान अल हफीज। जितनी अच्छी चीज है ना उतनी बुरी चीज भी है, इस्तेमाल सही हो तो चीज सही, फी नफ्से ही चीज सही होती, इस्तेमाल सही या गलत वो इंसान के ऊपर बात। एसएमएस में क्या है, उसमें कम पैसे लगते हैं, बात करने में ज्यादा। एसएमएस में आपने लिख दिया, बटन दबाया, पहुंच गया उसके पास। लेकिन यहां से एसएमएस किया और वहां मोबाइल बंद, क्या हुआ? पहुंचेगा? पहुंचेगा तो सही, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, क्यों? मोबाइल बंद। मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पीर की तरफ से एसएमएस आ रहा है तो तुम्हारा ये मोबाइल खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां से आता रहे, पता चले यहां बंद, कुछ नहीं। दोनों मोबाइल खुले हों जब एसएमएस पहुंचेगा, मैसेज तब पहुंचेगा, और अगर नहीं तो नहीं पहुंचेगा। वहां तो खुला ही खुला है और वहां से बराबर आ रहा है, यहां अगर खुल जाए, ये कल्ब का दिल, कल्ब का आईना साफ हो जाए, तो फिर देखो कैसे एसएमएस आते हैं। फिर पता चलेगा कोई अजमेर से आ रहा है, कोई बगदाद से आ रहा है, कोई मदीने से आ रहा है। फिर मोबाइल में एक और चीज भी है, अब तो तस्वीर भी आने लगी, तस्वीर भी आती है, आती है ना तस्वीर, किसी की तस्वीर फीड कर उस, कोई किसी की करता है, कोई किसी की, कोई अपने पीर मुर्शिद की करता है, कोई अपने वालदैन की करता है, कोई किसी की करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी कर लेता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी फीड कर लेता है। तो इस मोबाइल में जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मदीने तैयबा की तस्वीर फीड कर लो अपने कल्ब को, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन कर लो, ताकि जब वहां से एसएमएस आए तुम्हें पता चल जाए, जब कल्ब के ऊपर नजर करो फौरन ज्यारत हो जाए, दिल के आईने में तस्वीर यार, जब तरह गर्दन झुकाई देखे, कल्ब साफ होने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि मदीने तैयबा जाओ, जालियों के सामने खड़े हो तब ज्यारत हो, अरे अगर कल्ब का आईना साफ है तो यहीं बैठकर बैठ जाओ, यहीं पर ज्यारत। इसीलिए मेरे रसूल को देखने वालों ने देखा है, किसी ने अजमेर में देखा है, किसी ने बगदाद में देखा है, किसी ने कलियर में देखा है, किसी ने कचौचे में देखा है, किसी ने बरेली में देखा है, ये सब देखने वाले अपने अपने मकाम पर रसूल की जियारत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कल्ब का आईना साफ हो चुका है, कल्ब रोशन हो चुका है, जहां बैठे वहीं हुजूर की जियारत, जहां बैठे वहीं जियारत। तो इस मोबाइल ने तो बहुत आसान कर दिया। खैर तफसील तो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए कि मोबाइल में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल में और बहुत सारी चीजें हैं, कितने नंबर फीड हो सकते हैं, कितनी चीजें फीड हो सकती हैं, आवाज महफूज हो सकती है, तस्वीर महफूज हो सकती है। फिर कभी वक्त होगा तो खाली मोबाइल पर ही गुफ्तगू करेंगे। अब मैं इस गुफ्तगू को अपने मुख्तसर करूं क्योंकि वक्त काफी हो रहा, حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ کی زندگی حقیقت میں ایک پاکیزہ زندگی تھی، اور ان کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مستحکم تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش خاک شفا مجھے مل جائے۔ خاک شفا جو جالیوں کے اندر خاک ہے وہ مجھے مل جائے، اور وہاں جب صفائی ہوتی ہے تو وہ خاک تقسیم کی جاتی ہے، اور وہ صفائی کرنے والا جب نکلتا ہے تو لوگ اس سے جا کر لپٹتے ہیں، عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ جالیوں کے اندر جو خاک ہے یہ مجھے مل جائے۔ ابھی یہ خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک عربی اندر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں خاک شفا تھی۔ اس نے کہا اتائے رسول، اتائے رسول، اتائے رسول، وہ ان کی گود میں ڈال کر چلا گیا۔ اسی وقت عرض کیا، اسی وقت سرکار نے سن لی، اور پھر آپ یہاں پر لے کر آئے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اسے رکھا، اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو وقت دفن یہ خاک میرے سینے پر مل دینا، نہلانے کے بعد میرے سینے پر مل دینا۔ اپنے وصال سے ایک روز قبل وہ خاک کی شیشی نکلوائی، احتیاط کے ساتھ رکھی، اور جب ہم نے حضرت کو غسل دیا وہی خاک شفا آپ کے سینے مبارک پر مل گئی۔ یہ تعلق ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا تعلق پیدا کرو، جب ایسا تعلق ہوگا پھر قرآن کہے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ حقیقت میں پاکیزہ زندگی ان بزرگان دین اور یہ کاملین کی زندگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ اسی لیے عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنا تعلق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط اور مستحکم کر دیا، اس لیے یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ کیفیت یہ تھی کہ آدمی کتنی ہی پریشانی میں آئے، کتنی ہی مصیبت میں آئے، اس کے دل میں کیسی بے چینی ہو، بے قراری ہو، جب حضرت کی محفل میں بیٹھتا تھا سکون مل جاتا تھا، سکون مل جاتا تھا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو آج بھی ان کے مزار کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو، وہی سکون آج بھی تمہیں مل جائے گا۔ جو زندگی میں سکون ہے وہی وصال کے بعد میں سکون، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا۔ زندگی میں بھی سکون، وصال کے بعد بھی سکون، مزار کے پاس بیٹھ جاؤ وہی سکون، وہی اطمینان۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرکز، مرکز روحانیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طریقت میں بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی پر اس کے واقعات بے شمار ہیں، مسلسل بیان کرتے رہیے لیکن وہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، آپ کی صحبت بافیض میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، یقیناً وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا کہ جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آئے، ان کی محفل میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے۔ انسان دنیا کو بھول جاتا تھا، غموں کو بھول جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنا وقت گزر گیا۔ یہ ان کی روحانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کی مبارک تقریب جو حضرت کی سالانہ فاتحہ کے سلسلے میں ہے، اور حضرت کو 3 سال ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2 جلیل القدر علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں جن کو خلافت اشرفیہ سے نوازا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب حضرت اشرف المشائخ کا کرم ہے۔ حضرت قطب ربانی، حضرت مخدوم سمنانی اور حضرت غوث جیلانی، ان سب بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا کرم ہے کہ اس درگاہ کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ تادیر جاری رہے گا۔ دوسری چیز میں آخری چیز بیان کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، وہ یہ ہے کہ خلافت ایک ذمہ داری ہے، خلافت ایک عظیم تحفہ ہے، خلافت ایک عظیم منصب ہے جو بزرگان دین اولیاء کاملین کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے اشارہ ہوتا ہے اسی کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ یہاں کے مانگے کہ ہمیں دے دو تو ہم اس کو عطا کر دیں، نہیں، خلافت بڑھتی نہیں ہے، خلافت عطا کی جاتی ہے۔ اور جن جن کو یہ نعمت ملتی ہے उनको समझ लेना चाहिए कि उन पर बुजुर्गान दीन और ये कामरीन का खास करम है, तब उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया गया। एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, कुछ लोग खिलाफत के मुतमन्नी मौजूद थे, हमें खिलाफत मिल जाए, ख्वाहिश रखते थे, लोगों से बार बार कहलवाते थे। हजरत ने फरमाया, अच्छा हम इम्तिहान ले ले फिर खिलाफत देंगे। जब वो लोग चले गए, खादिम से कहा, ऐसा करो एक ये बर्तन उठाओ, उसके अंदर दो चूहे रख दो, चूहे बंद कर दो और ऊपर से ढकना ढाक के इसको कपड़े में कर दो, जैसे कि खाना लेके जाता। रख दिया। जब वो खिलाफत के मुतमन्नी आए तो उनसे कहा, भैया हमारी एक अमानत है, इसको फला बुजुर्ग के पास पहुंचा देना, लेकिन खोल के नहीं देखना, ये राज है। कहा ठीक है। उसने उठाया और कंधे पर जब चलने लगा तो चूहों ने फुदकना शुरू कर दिया। अब वो देख रहा है कि ये बर्तन के अंदर क्या चीज उछल रही है, ये खाना तो ऐसे फुदक नहीं सकता, और हुक्म ये है कि खोल के नहीं देखना। रास्ते में सोचा कि यार हजरत तो देख नहीं रहा, खोल के देख लूं है क्या। कपड़ा खोला, जब बर्तन हटाया वो चूहा निकल के भाग। अरे ये चूहा भेजा है अपने बुजुर्ग एक दूसरे बुजुर्ग के लिए, ये तो बड़ी गलती हुई। फरमाया था खोल के देखने, मैंने खोल दिया, क्या करें। दिल में सोचा उनको क्या पता कि मैंने खोला या नहीं खोला, ढकना ढका, दोबारा से कपड़े से बांधा, कंधे पे रख के फिर चल पड़े। जहां पर पहुंचे, जिन बुजुर्ग के पास पहुंचे, उन्होंने शक्ल देखकर कहा, मियां जो अमानत थी वो तो रास्ते में छोड़ा है, खाली बर्तन क्या लेकर आ रहे हो। जो अमानत थी वो तो रास्ते में छोड़ दी, ये खाली बर्तन का मैं क्या करूं, ले जाओ वापिस। बड़े परेशान हुआ, अरे इनको पता चल गया। चलो उनको तो नहीं पता, इनको चल गया होगा, ये ज्यादा मर्तबे वाले होंगे, उनको नहीं पता होगा। दोबारा से लेकर वापस चले। जब अपने पीर मुर्शिद के पास पहुंचे, उन्होंने शक्ल देखी, कहा, जब दो चूहे नहीं संभाल सकते तो खिलाफत क्या संभालोगे। दो चूहे नहीं संभाल सके, खिलाफत क्या संभालोगे। क्या मतलब, वो ये सोच रहा था कि ना इनको पता है ना उनको पता है। हकीकत ये थी कि इनको भी पता था, उनको भी पता था, यहाँ से रूहानी वायरस दोनों का हो चुका था। इन्होंने बता दिया हम भेज रहे हैं, उन्होंने बता दिया ये छोड़कर आ रहा है, इन्होंने शक्ल देखकर पहचान लिया, उन्होंने भी शक्ल देखकर पहचान लिया। तो पता ये चला कि ये अजीम मनसब है जो आज इन दो उलमाए किराम को अता हुआ है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनसे कि वो इस मनसब की और जो नेमत उन्हें अता की गई है, इंशाअल्लाह ताला अपने आप को इसका अहल साबित करेंगे। और इनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए फैजान अशरफिया मजीद जारी फरमाए, और दीन की जो खिदमत ये हजरात कर रहे हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में रोजनामा ईमान, जिसने आज के इस 12 नवंबर की अपनी इशात में अशरफ नामा राकीन का तहे दिल से मशहूर हूं, और इस सिलसिले में जनाब असद नूरानी साहब जीदा मजदहू का कि जिनकी कोशिशें काविशें इसमें शामिल रही, इनके लिए भी हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में उमर में बरकत अदा फरमाएं। ये भी हजरत अशरफ उल मशाइख से बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को कबूल फरमाएं। mustafai.com जिस पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि बिरादर साहबजादा हकीम सैयद अशरफ जिलानी दामत बरकातुहु अलैहा ने ऐलान किया था कि जो लोग देखना चाहें वो उस पर देख सकते हैं, और इंशाअल्लाह देख रहे होंगे। हम उनका भी तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, फैलाने में, नशर करने में मदद की। अल्लाह तबारक व तआला उन सब की खिदमत को कबूल फरमाए, और इसके बाद वो तमाम अराकीन मरकजी हल्का शफिया के तमाम अराकीन जिन्होंने दामे दिरहमे सुभाने कदमे इसमें हिस्सा लिया, और इस प्रोग्राम से पहले हफ्ते अशरफुल मशाइख मनाया, और चारों हलकों में उन्होंने पीआईपी कॉलोनी में, नई कराची में, खारादर में, लियाकताबाद में और गुलबहार में, इन पांचों हलकों में उन्होंने अशरफुल मशाइख हफ्ता अशरफुल मशाइख के सिलसिले में महाफिल मुनक्किद की, उलमाए किराम ने खिताब किया, हजरत को खिराज तहसीन पेश किया। मैं उन तमाम कारकुनान को कि जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिस तरह भी हिस्सा लिया, मैं उन सबके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमाए, उनके रोजगार में तरक्की अता फरमाए, और उन सबकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशान پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی حیات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو علماء کرام یہاں تشریف لائے, حضرت علامہ مولانا غلام قمر الدین سیالوی صاحب, حضرت علامہ مولانا شاہدین اشرفی صاحب, میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. انشاءاللہ تعالی جو بھی یہاں پر آیا ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر آیا ہے خالی ہاتھ نہیں جائے گا, فیضان سے مستفید ہو کر جائے گا, فیضان سے مستفید ہو کر جائے گا, روحانی غذا اسے ملے گی, بلکہ روحانی غذا مل چکی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جسمانی غذا کا بھی انتظام, جسمانی غذا بھی موجود ہے, تو غذائے روحانی اور غذائے جسمانی, اور وہ بھی بریانی, تاکہ دور ہو جائے آپ سب کی پریشانی. وما علینا الا البلاغ.